मुख्य समाचारों में यूक्रेन संघर्ष के चलते रूसी तेल पर निर्भरता में कटौती करने के लिए यूके और यूएस ने किया नेतृत्व। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा न्यू साउथ वेल्स के बाढ़ प्रभावित हिस्सों का दौरा और भारत के गेहूं निर्यातकों के लिए दिख रहा है एक नया अवसर। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के चलते पूरी दुनिया रूसी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए एकजुट है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन पहले से ही रूसी तेल और अन्य ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अमरीकी बंदरगाहों पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्री जॉनसन का कहना है कि रूसी सैनिकों की कार्रवाइयों पर मध्य यूरोपीय देशों में असंतोष का स्तर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें धीरे धीरे कदम उठाने की उम्मीद है ताकि आपूर्ति बाधित ना हो, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासन को दंडित करना महत्वपूर्ण है।
Dependence on Russian oil and gas, because these are the very, very big dependencies that European countries have. The UK is less exposed, but clearly we do have diesel that comes from Russia.
राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो जब तक यूक्रेन पर रूस का युद्ध जारी रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स को पेट्रोल के लिए $2 प्रति लीटर से अधिक का भुगतान करना होगा। एनआरएमए के प्रवक्ता पीटर खूरी का कहना है कि ड्राइवर जो कीमत चुका रहे हैं वो अभूतपूर्व है। अधिकांश राजधानी शहरों में औसतन $2 प्रति लीटर की उम्मीद है। श्री खूरी ने कहा कि विश्व स्तर पर किसी भी ऐसे कारक को देखने में वो असमर्थ हैं जो ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स के लिए कोई अल्पकालिक राहत प्रदान करेगा। न्यू साउथ वेल्स मेट्रोपॉलिटन रोड के मंत्री सड़क पर लगातार खतरनाक परिस्थितियों के कारण मोटर चालकों से बैरियर्स के आसपास या बाढ़ के पानी के बीच से ड्राइव न करने का अनुरोध कर रहे हैं। शहर में किन सड़कों पर गंभीर गड्ढे हैं इसका पता लगाने के लिए एक ऑडिट का अनुरोध किया गया है, ताकि बाढ़ के दौरान सड़क पर सुरक्षित यात्रा करना सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री नेटली वार्ड ने कहा कि चाहे आप सड़कों से परिचित भी हों, फिर भी अप्रत्याशित मौसम के कारण ड्राइवर्स को ड्राइविंग को कम करने की आवश्यकता है।
Those maintenance repair crews are out there doing temporary repairs on those potholes, but of course you can't fix them permanently until it's dry weather. So they will be doing the temporary repairs for now, but please know that those potholes won't be able to fix until the weather dries. We will have to wait until that's done.
आज भी क्वींसलैंड में मौसम ब्यूरो ने अलग-अलग तूफानों की चेतावनी दी है और अधिकारी राज्य में मौसम संबंधी क्षति का आकलन कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स में 40 से अधिक स्थानीय सरकारी क्षेत्रों को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। बाढ़ की सफाई में सहायता के लिए अतिरिक्त $1 मिलियन सरकारी अनुदान की घोषणा की गई है। आपातकालीन प्रबंधन के लिए फेडरल मंत्री ब्रिजिट मैकेंजी का कहना है कि एक सदा हुआ दृष्टिकोण संसाधनों और वसूली के प्रयासों में मदद करेगा। मौसम ब्यूरो मध्य उत्तर, मध्य और दक्षिण तटों पर न्यू साउथ वेल्स के इलावारा, सिडनी और हंटर क्षेत्रों में तेज हवा की चेतावनी दे रहा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा लिस्मोर की यात्रा पर उप प्रधानमंत्री बानबी जॉयस ने स्काई न्यूज से कहा है कि जनता प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत नहीं भी कर सकती है।
You know, the pain that they're going through, that I would be incredibly surprised if people got a happy reception, because they're not happy.
New South Wales सरकार ने अतिरिक्त 28 बाढ़ प्रभावित परिषदों में से प्रत्येक को $1 मिलियन का अनुदान जारी किया है। इससे परिषदों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की कुल राशि $45 मिलियन हो जाती है। अधिकारियों का कहना है कि फंडिंग प्रभावित परिषदों को बाढ़ का पानी कम होने पर जल्द से जल्द वापस सामान्य होने में मदद के लिए हैं। राज्य प्रीमियर डोमिनिक पेरेटे का कहना है कि अनुदान 434.7 मिलियन फंडिंग रिकवरी पैकेज का हिस्सा है, जिसे कॉमनवेल्थ और न्यू साउथ वेल्स सरकारों द्वारा सह स्थापित किया गया है। फेडरल विपक्ष नेता एंथनी एल्बनीज़ी मई के फेडरल चुनावों में चुने जाने पर इस विभाजन को खत्म करने और आम सहमति की भावना को जगाने की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा बंद होने के कारण जो प्रवास यानी माइग्रेशन में रुकावट हुई, वो आंशिक रूप से बताता है कि ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की समस्या की क्या स्थिति है। श्री अल्बनीज़ी का कहना है कि सहयोग ही आगे का रास्ता है और अपने नियोजित दृष्टिकोण की मैपिंग करते हुए कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक से प्रेरित हैं।
We'll start by heeding the economic lessons of the COVID pandemic, which has exposed weaknesses in our economy that simply must be addressed. The abrupt closure of international borders, for example, exposed our serious skills shortage, underinvestment in skills training, and our resultant over-reliance on overseas workers.
Victoria में एक मृत्यु होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था इंसेफेलाइटिस के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान कर रही है। इंसेफेलाइटिस सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया लोगों से इस बीमारी को गंभीरता से लेने का आग्रह कर रही है, क्योंकि चल रही बाढ़ से बीमारी के और मामले होने का खतरा है। इस स्थिति के लक्षणों में फ्लू जैसी बीमारी, सिरदर्द, उनींदापन और अन्य व्यवहार शामिल हो सकते हैं, जो आमतौर पर संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 5 से 28 दिनों के बाद दिखाई देंगे। पीक बॉडी चेतावनी दे रही है कि मस्तिष्क की सूजन की बीमारी वाले 40% लोगों की इस स्थिति से मृत्यु हो सकती है और कईयों को दूसरी कठिनाइयां हो सकती हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर एवा एडस्टन का कहना है कि ये वायरस गंभीर है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
World Encephalitis Day was on the 22nd of February, and that was just a few days before the outbreak that we've seen in Australia. But getting any real traction and drawing attention to the condition was really hard. And I think we're not learning lessons from other outbreaks. So we need more investment in research, we need more awareness, and we need policymakers and health professionals taking the time to look at the potential impact and consider solutions for public health.
भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि चुनाव के कारण हमने कच्चे तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई थीं और ये कहना गलत होगा। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों को तय करना है, क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहना है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होती हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या यूक्रेन संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेजी से महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारत में भी दाम क्या बढ़ेंगे। उधर इस बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से एक ओर जहां कच्चा तेल महंगा हो रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन गेहूं की दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक देशों में हैं, जहां से 29% तक गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँचता है। रूस पर लगी पाबंदियों की वजह से गेहूं की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है और भारत के गेहूं निर्यातकों के लिए ये एक नया अवसर बनता दिख रहा है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 72 सेंट और भारत के लगभग 56 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सरकार दिवंगत क्रिकेट के दिग्गज रॉड मार्श के लिए एक राजकीय मेमोरियल सर्विस के लिए कह रही है। मार्श का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और हालांकि उनका जन्म पर्थ में हुआ था, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में करने की संभावना है, जहां वो रहते थे। मार्श की क्वींसलैंड में दिल का दौरा पड़ने से 4 मार्च को मृत्यु हो गई थी। और क्रिकेट में गेंद पर थूक लगाने को लेकर मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए कानून अक्टूबर से लागू होंगे। गेंदबाज अब गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बृहस्पतिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।